ओम शांति हम क्यों कहते हैं? पहले पहले अच्छा है, ओम शांति बोलते रहेंगे, रोमांच खिल जाएंगे। और जब रोमांच खिल जाएंगे तो बहुत ध्यान से सुन सकेंगे। तो हम बता रही थी पहले पहले जब हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, बाबा ने हम बच्चों को ये बहुत अच्छा अभ्यास सिखा दिया है, ये बहुत अच्छा नियम है। जब भी हम कोई कार्य शुरू करें तो बाबा की याद से करें, और उसी याद के बाद जब आवाज में आते हैं तो भी पहला आवाज हमारा मुख से यही निकले कि मैं वही शुद्ध स्वरूप, शांत स्वरूप आत्मा हूं। इसी को ही याद कहा जाता है। आज का विषय है योग अग्नि को प्रज्वलित कैसे किया जाए। ऐसे तो हम सभी योग के अनुभवी है, बाबा के योगी बच्चे, ब्राह्मण बच्चे बैठे हुए हैं, जानते हैं योग किसको कहा जाता है। योग अर्थात याद, कौन सी याद, किसकी याद? तो कहेंगे योग अर्थात एक बाप की याद। किसको याद? इसलिए पहले बाबा ने हमें ये नियम दिया है, हमें ये स्मृति रहे मैं आत्मा शरीर के द्वारा बोलती हूँ। तो जब ये स्मृति है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये स्मृति बनी रहे, इसको कहा जाएगा याद। याद की यात्रा को ही दूसरा शब्द योग कहते हैं। और भी कहेंगे योग अर्थात मन की एकाग्रता, मन एक में लगा रहे और निरंतर लगा रहे। एकाग्रता अर्थात एक ही याद में, एक के ही याद में अधिक समय, कुछ समय निरंतर बैठे रहें। जितना समय हम निश्चित करके बैठे, हमें बैठना है याद में, उतना समय एकाग्रता पूर्वक अर्थात एक में ही हमारा चित लगा हुआ हो, एक में ही हमारा मन लगा हुआ हो, मन के अंदर और कोई प्रकार का कोई भी संकल्प न आवे, इसको कहा जाएगा मन की एकाग्रता अर्थात योग। और योग हम किसको कहते हैं? योग अर्थात बाप से संबंध। योग शब्द ही आत्मा और परमात्मा के संबंध में कहा जाता है। योग लगाना है आत्मा को और परमात्मा के साथ लगाना है, अर्थात उनकी याद में रहना है। तो ये योग शब्द वास्तव में आत्मा और परमात्मा के संबंध में ही कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं योग अर्थात मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, कौन सा संबंध, चाहे बाप बच्चे का संबंध कहें, चाहे मात पिता का संबंध कहें, चाहे बंधु सखा का संबंध कहें, बल्क अगर ऐसे कह दें कि सर्व संबंध एक बाप के साथ जुटे हुए हो, ये हमें स्मृति हो, ये हमें अनुभव हो, इसको कहा जाएगा योग अर्थात याद। योग को हम लोगों ने, अथवा ऐसे कहें कि बाबा ने हम बच्चों को योग बड़ा सहज रीति से, सरल रीति से सिखाया है, इसलिए योग शब्द को याद शब्द में परिवर्तन किया है, योग अर्थात याद। ये भी हम लोग जानते हैं, जीवन के अंदर, मनुष्य जीवन में कई प्रकार की यादें रहती हैं। जीवन भर में हम जिन जिन के संबंध में आते हैं उनकी याद जीवन में बनी रहती है, और समय समय पर जिनों के संबंध में हम आए हुए हैं उनकी याद आती ही रहती है। इसी प्रकार से जब हम आत्माओं को बाप ने ये याद दिलाया है कि मैं अविनाशी और अनादि आत्मा हूँ, मुझ अनादि अविनाशी आत्मा का संबंध अनादि काल से अविनाशी पिता के साथ है, जिस संबंध को हम भूल चुके थे वही संबंध फिर से बाप ने आकर के याद दिलाया है। केवल याद दिलाया है इतना ही नहीं, परंतु आकर के अपने साथ फिर से संबंध जुटाया है। तो मुझ आत्मा का बाप के साथ संबंध जुटा हुआ हो, इसको कहा जाएगा याद अथवा योग। और योग किसको कहते हैं, और योग का अर्थ हम क्या कहेंगे, योग अर्थात बाप से स्नेह। क्योंकि ये जो हम आत्माओं का अविनाशी पिता के साथ अविनाशी संबंध है, ये संबंध स्नेह का संबंध अनादि काल का है, और इस संबंध में हमारा स्नेह है क्योंकि बाप से हमें बहुत प्राप्तियां होती है। स्नेह संबंध के आधार पर भी होता है और स्नेह प्राप्ति के आधार पर भी होता है। स्नेह जब कोई समय पर, आपातकाल के समय अगर कोई हमें मदद करता है, सहयोग देता है, तो उनके प्रति भी स्नेह होता है। तो हम आत्माएं देखें, परमात्मा पिता ने हमें हर प्रकार से स्नेह दिया है, अर्थात पिता के साथ, परमात्मा के साथ हमारा अविनाशी काल का, अनादि काल का संबंध है, इसलिए भी हम आत्माओं का परमात्मा के साथ स्नेह होना ही चाहिए। और आपातकाल के समय अर्थात जब हम अति दुखी हो गए हैं, जैसे आप लोगों को याद होगा एक बार साकार बाबा की मुरली में बाबा ने ये कहा था कि मेरा, माना बाप को बच्चों के लिए कितना प्यार है, इतना प्यार है जो बाप बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकता, और बच्चों को दुखी देखकर बाप स्वयं अपना परम धाम छोड़ करके भी इस पृथ्वी पर तमो प्रधान दुनिया में, पतित दुनिया में आता है, किस लिए? बच्चों को सुखी करने के लिए। तो ये बाप का हम बच्चों के प्रति प्यार, और ये प्यार फिर हम आत्माएं जब बाप से सुख की प्राप्ति करते हैं, दुख से छूट जाते हैं, तो सुख की प्राप्ति होने से, शांति की प्राप्ति होने से फिर हम आत्माओं का बाप के साथ प्यार बन जाता है। जो प्यार अविनाशी पिता के साथ प्यार, अटूट प्यार बन जाता है, जब हम आत्माएं ये अनुभव करती है बरोबर वही हमारा बाप फिर से आया है हम बच्चों को सुखी बनाने के लिए, और उस सुख का हम अनुभव करते हैं, तो बाप के साथ अटूट प्यार बन जाता है। अर्थात जो प्यार कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई कितना भी कहे, कुछ भी करे, परंतु जो प्राप्ति हमें बाप से होती है, उस प्राप्ति के आगे कोई भी परिस्थिति हमारे इस प्राप्ति के आधार पर जो प्यार है उसको कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं सकती है। ये हम आत्माएं तब कह सकती है जब हमारा बाप के साथ इतना अटूट प्यार है, निरंतर प्यार है। हमने बाप से प्राप्तियों का अनुभव किया है, तो वो अनुभवी होने के कारण वो प्यार हमारा कभी भी टूट नहीं सकता है। तो बाप के साथ स्नेह बना रहे, बाप के साथ हमारा अटूट प्यार बना रहे, इसको भी योग कहा जाता है। और योग किसको कहेंगे? उस हमारे स्नेह का, उस हमारे प्यार का प्रमाण क्या है, जिसको भी हम योग कह सकते हैं? तो योग अर्थात बाप की सदा श्रीमत पर चलने वाले, ये है हमारा बाप के साथ प्यार है, उसका प्रमाण जो हमारे जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई पड़े। जिसके लिए प्यार होता है उनकी हर बात मानी ही जाती है। और ये भी हम जानते हैं, बाप जो भी हम बच्चों को कहते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, वो हम बच्चों के ही कल्याण के लिए, हम बच्चों को सुखी बनाने के लिए, हम बच्चों को ऊंचा बनाने के लिए बाप करते हैं। जब हम ये जानते हैं तो बाप की उस हर श्रीमत को हम सदा पालन करते रहेंगे। ये है बाप से, परमात्मा से जो हमारा प्यार है, उसका ये प्रमाण हमारे जीवन में रहेगा कि हम हर कदम बाप की श्रीमत के अनुकूल चलेंगे। बल्कि केवल कदम ही नहीं, कर्म ही नहीं, परंतु जो हमारा संकल्प भी चलेगा, वो संकल्प भी श्रीमत के अनुकूल ही रहेगा। इसको ही वास्तव में बाप के साथ सच्चा प्यार माना जाता है, जिसको ही हम योग कहेंगे। योग का अर्थ केवल ये नहीं है कि हम जब आसन लगा के बैठे तब ही हमारा योग है। लौकिक जीवन में भी हम देखेंगे जिसके साथ संबंध होता है, जिसके साथ स्नेह होता है, चाहे वो कहां भी हो, परंतु उनकी याद आती रहेंगी, उनकी बातें हमें याद रहती ही रहेंगी। समय समय पर, कोई भी प्रसंग पर हमें वो बातें याद आती रहेंगी। इसी प्रकार से हम आत्माएं, जब बाप हम आत्माओं को आकर के जागृत करते हैं, ज्ञान का प्रकाश देते हैं, आत्मा की ज्योति जगाते हैं, तो जब हमारे में ये जागृति आ जाती है, तब हम अपने बाप को, परमात्मा पिता को अच्छी रीत पहचान करके, क्या पहचान है, ये वो ही हमारा बाप है, इस सर्वशक्तिवान बाप के साथ ही हम अपने घर में परम धाम में निवास करते थे। ये सारी स्मृतियां मुझ आत्मा के अंदर जागृत हो जाती हैं। जब ये स्मृतियां हमारे अंदर जागृत हो जाती हैं, जो बात एक बार स्मृति में आ गई और उस स्मृति से हमें प्राप्ति का अनुभव हो गया, वह स्मृति हमारे अंदर खुशी ले आती है, उस स्मृति से हमें बड़ा आनंद आता है। जब ऐसी स्मृति हमारे अंदर जागृत हो गई, तो वह स्मृति फिर भूल नहीं सकती है, फिर हम विस्मृत नहीं हो सकते हैं। तो जब एक बार हमें जागृति आ गई, स्मृति आ गई, मेरा यही अविनाशी पिता है, यही पिता मुझ आत्मा का कल्याणकारी है, इस पिता के द्वारा ही मैं आत्मा फिर से अपने अविनाशी सुख को, अविनाशी वर्षे को प्राप्त कर सकती है। जब ये बातें हमारे स्मृति में आ जाती हैं, हमारे जीवन के अनुभव में आ जाती हैं, तब फिर ये स्मृति हमें भूलती नहीं, और ये स्मृति हमें चलते फिरते उठते बैठते हर समय भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से ये स्मृति मुझे आती रहेंगी। इस स्मृति को भी हम योग कहेंगे। जब इस प्रकार से हमारा योग लग जाता है, इसको कहा जाएगा निरंतर योग। जब हमारा ऐसा निरंतर योग, चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी काम करते रहें, स्मृति अंदर की वस्तु है, स्मृति अंदर बुद्धि में रहती है, जो समय समय पर संकल्प में इमर्ज होती है। तो ऐसी स्मृति जब हमें आ जाती है, जागृत हो जाती है, तो हमारे संकल्प भी स्मृति स्वरूप के ही चलते हैं, अर्थात जो जो बाप हमें बताते रहते हैं, जिसको हम अगर दूसरे शब्दों में ज्ञान कहें, तो वो ज्ञान का स्मरण संकल्प रूप में चलता है। और स्मृति कौन हूं, कैसा हूं, कौन मेरा बाप है, क्या आकर के मुझे दिया है, वही कलप पहले वाली स्मृति जागृत हो जाने से वो स्मृति अंदर में बनी रहती है, यादें बनी रहती हैं। एक बार जब किसके साथ संबंध हो जाता है, एक बार जब जिससे स्नेह हो जाता है, एक बार जब किससे प्राप्ति हो जाती है, तो वो जीवन भर तक नहीं भूल सकती। ये जब मनुष्य जीवन में, आज के संसार में भी जब ऐसा होता है, ये तो अविनाशी पिता, अविनाशी आत्मा और उनके द्वारा अविनाशी प्राप्ति होती है। तो अविनाशी प्राप्ति जब हमें हो गई, तो वास्तव में कहा जाए कि वो हमें विस्मृति हो नहीं सकती। अब पहले पहले तो हमें स्वयं पर ये अटेंशन रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा कि अंदर में हमारी ये स्मृति बनी रहती है। जैसे हम लोग जब शुरू शुरू में आए ज्ञान में, जब शुरू में शिव बाबा ने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश किया और जब शुरू में हम बाबा के सामने साकार में आए और जब साकार बाबा को देखा, देखने से ही आत्मा को अंदर ऐसे महसूस हुआ बरोबर भगवान तो आ चुका, हमारे सामने वही भगवान है जिस भगवान को सारी दुनिया याद करती है। जब ऐसी पहचान आत्मा को आ गई, ये स्मृति आ गई, आत्मा ने फौरन स्वीकार कर दिया ये मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूं, और एक धक से संसार की बातें, संसार के संबंध टूट गए और बाबा के बन गए। लेकिन बन जाने के बाद भी फिर हमारा ये अभ्यास निरंतर चलता रहा, साकार में बाबा हम बच्चों को चलते फिरते बार बार ये स्मृति दिलाते रहते थे, बच्चे ये याद है मैं आत्मा हूँ, शरीर के द्वारा कर्म करा रही हूँ। तो ये पहली स्मृति जो पहले पहले आत्मा को स्वयं की स्मृति बाप आकर के देते हैं, उसका अभ्यास हमें निरंतर करते रहना पड़ता है, जिससे हमें ये महसूस हो जाए कि ये तो मेरा पार्ट है, देह को मैंने धारण किया है, देह मेरे से अलग है, देह रूपी वस्त्र आत्मा ने पहना है। जब देह रूपी वस्त्र को धारण किया है तो धारण करने वाली आत्मा है और आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है। ये अभ्यास शुरू शुरू में हम लोग रात रात जाग करके ये अभ्यास करते थे और इसीलिए करते थे कि ये अभ्यास हमारा नेचुरल हो जाए, अपने आप स्मृति बनी रहे। यूं तो हम साकार बाबा के सामने थे, साथ रहते थे, तो बाबा के सामने आने से तो स्मृति इमर्ज ही रहती थी, भूलती नहीं थी, अपने आप इमर्ज है। बल्कि जब हम ये अभ्यास करते रहे तो अंदर ही अंदर नेचुरल ये जागृति बनी रहती थी। चलते चलते ये अंदर में संकल्प चलता रहेगा, मैं आत्मा हूं, शरीर के कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूं। ऐसी स्मृति हमारी अटूट बन जाए, इसका हमें ध्यान जरूर रखना होगा। इस स्मृति के साथ बाप की स्मृति, मैं किसकी संतान हूं, फिर जैसे आज बाबा ने बताया कि मैं बच्चों को करेंट देता हूं, याद है ना मुरली, आज की मुरली, साकार बाबा की मुरली, कौन से बच्चे करेंट ले सकते हैं? बाप तो सवेरे सवेरे उठ करके बच्चों को करेंट देते हैं, सकाश देते हैं, लेकिन वो सकाश बाप की कौन से बच्चे धारण कर सकते हैं? जिनके बुद्धि की लाइन क्लियर होंगी, जिनों को पुरानी दुनिया का कोई भी संबंध, कोई भी वस्तु वैभव याद न होगा। तो योग अर्थात हमें एक की याद रहे, जो कुछ पुरानी दुनिया जो इन आंखों से देखते हैं उनके लिए हमें ये स्मृति रहे, ये सब विनाश होने वाला है, खत्म होने वाला है, पुराना है, पतित दुनिया है। जो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ता है, आत्मा को हम इन आंखों से देखते हैं, जब हम स्वयं को इन आंखों से नहीं देखते तो स्वयं की स्मृति भी इतनी ही हमें जागृत रहे और उस स्मृति के साथ ये स्मृति रहे, बाप आया है, अब नई दुनिया स्थापन कर रही है, हमें नई दुनिया में जाना है। जो जो बाप ने हमें स्मृतियां दिलाई हैं, जो जो बाप ने हमें अनुभव कराए हैं, जो जो बाप के द्वारा हमें प्राप्तियां हुई हैं, वो प्राप्तियां बिना बिना शब्दों में, बिना बिना प्रकार से हमें याद आती रहनी चाहिए। जिस भी प्रकार से हमें स्मृति, बाप के द्वारा दिलाई हुई स्मृति, जब स्मृति में जागृत है, तो उसको हम योग कहेंगे। जब ऐसी स्मृति हमारी निरंतर बनी रहती है, और तब फिर हम अगर योग में बैठते हैं समय निकाल करके, तो योग हमारा एक सेकंड में लग जाएगा, क्योंकि दिन भर हमारी स्मृति जागृत है। और वो योग जिस स्टेज में हम बैठे, बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में हम बैठेंगे, तो उस समय की स्टेज हमारी बड़ी पावरफुल रहती है। सर्वशक्तिवान बाप, ऑलमाइटी अथॉरिटी, अगर नाम कहो ऑलमाइटी अथॉरिटी, तो कितनी ऊंची बात है। ऑलमाइटी अथॉरिटी एक ही सर्वशक्तिवान बाप, हम उनके बच्चे। उस नशे से जब हम योग में बैठते हैं और वो योग हमारा एकाग्रता पूर्वक रहे, टूटे नहीं, निरंतर बना रहे, निरंतर पावरफुल स्टेज में हम रहें, उसको कहेंगे कि हमारी योग अग्नि प्रज्वलित है। अभी अभी हम योग में हैं, कोई संकल्प आ गया, हम उसको हटाने का प्रयत्न करें, तो उस समय योग अग्नि प्रज्वलित, अग्नि का काम नहीं करेंगी। अग्नि माना जिसके अंदर जो चीज डालो भस्म हो जाए, या अग्नि जब प्रज्वलित है, उस पर कोई चीज बनाओ तो बन करके तैयार मिले। एक तरफ भस्म करने का काम करती है, और दूसरी तरफ अग्नि पकाने का भी काम करती है, तैयार करने का काम करती है। अब ये योग हमारा इस प्रकार के अग्नि का काम, बाबा कहते हैं बच्चे इस योग से अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म होता है। जितना तुम मुझे याद करेंगे, मेरे को निरंतर याद करने से मैं तुमको पापों से मुक्त कर दूंगा। मेरे को निरंतर याद करने से तुम्हारे अनेक जन्मों के विकर्मों का खाता भस्म हो जाता है। तो मेरे को निरंतर जब हमारी याद है, क्योंकि निरंतर याद ही अग्नि का काम करें, पावरफुल बनेंगी ना, जितनी निरंतर याद है। लेकिन याद के अंदर जो बातें हमने पहले बताई हैं, प्राप्ति भी स्मृति में रहे और उस प्राप्ति की खुशी रहे, स्नेह प्यार भी बाप के साथ अटूट हो, कोई भी परिस्थिति के वश हमारा प्यार टूटा हुआ ना हो, टूटे नहीं, और वो हमारा अधिक समय से ऐसा चलता है। आज हमारा बाबा से प्यार है, कल कोई परिस्थिति आई, कोई हमारे मन में ऐसी बात आई, हमको उसके अनुसार कोई ऐसी सेलिब्रेशन न मिली, हमारी खुशी गुम हो गई, तो मानो हमारा बाप से प्यार हल्का हो गया। जो हमारा प्यार अटूट बना रहे, उस प्यार में रुकावट आ गई। तो ऐसे रुकने वाला प्यार, माना अभी अभी प्यार है, अभी अभी हम प्यार में बड़े खुश हैं और अभी अभी हमारे मन में ऐसी बात आई, हमारी खुशी गुम हो गई, हम उदास हो गए। इस प्यार से, इसको योग नहीं कहेंगे, ऐसा योग अग्नि का रूप पावरफुल नहीं बन सकता है। हमारा योग पावरफुल तब रहता है जब अधिक समय हमारा निरंतर योग चला रहता है। बाबा ने देखो इसलिए ये संगठन बच्चों का रखा है, तो बच्चों के संगठन से भी एक दो को मदद मिलती है। कभी कोई बात हमारे सामने आती है, हम उसको नहीं समझ पाते हैं या समझो हम उसमें विस्मृत हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, लेकिन संगठन की शक्ति अपने और भाई बहनों को देख करके, उनके साथ बातचीत करते या उनके संगठन में बैठने से, वो शक्ति फिर हमें स्मृति दिला देती है और हमारी उदासी खत्म होकर के हम फिर खुशी में आ जाते हैं। तो ये भी बाबा ने हम बच्चों को, हमारा योग निरंतर बना रहे, हम एक दो को देख करके आगे बढ़ते जाएं, अगर कहीं परिस्थिति हमें रुकावट डाले तो फिर हम अपने परिवार को देख करके परिस्थिति से पार हो सकें, ये सब हमको सहज योगी बनाने के लिए बाबा ने ये भिन्न भिन्न प्रकार की सहज विधियां हमें दी हैं। उन सब विधियों को जितना जितना हम उसका अभ्यास करते जाएंगे, जितना जितना हम उसमें अनुभव प्राप्त करते जाएंगे, जब हमारे अंदर ये प्राप्ति का अनुभव होता जाएगा, फिर हमें बाप की याद कभी भूल नहीं सकती। और भी बाबा ने हमें सहज विधि दी है कि बच्चे जो तुम्हें बाप से खजाना मिलता है वो तुम देते जाओ, दाता के बच्चे तुम भी दाता बनो। ये भी विधि हमें योग में रहने के लिए मदद करती है। अगर हम दाता बन करके बाप के दिए हुए खजाने औरों को देते जाते हैं, जो बाप से हमें मिला है वो हम दूसरों को देते हैं, तो उन्हों को भी वो सुख महसूस होता है, तो उनकी आशीर्वाद निकलती है, उनको खुशी होती है, उनकी खुशी भी हमें खुशी देती है। तो ये सब साधन है अथवा विधि है हमारे योग को निरंतर बनाने के लिए। इसलिए इन सब बातों को जितना जितना हम करते चलेंगे, योग अग्नि अर्थात पावरफुल योग, जिस योग में कैसी भी परिस्थिति, माया किस भी प्रकार से विघ्न डालने की कोशिश करे, परंतु उसका काम न हो, वो विघ्न रूप न बने और उस विघ्न से हम पार होते जाएं, ऐसा पावरफुल योग, जो जो भी मेरे अंदर कमजोरी हो, उस कमजोरी को मिटाकर हम अपने को शक्तिशाली बना सकें। आप लोगों को याद होगा, अव्यक्त बाबा ने इस वर्ष हम लोगों को यही कहा है, योग का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, अपने पर पहले प्रयोग करो, ये वर्ष प्रयोगशाला में रहो, प्रयोगशाला पहले स्वयं के लिए। वैसे तो हम कहें कि हम ज्ञान और योग का प्रयोग तो अपने पर करते ही आ रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं संपन्न बनने में, संपूर्ण बनने में जिस भी बात की रुकावट हमें महसूस होती है, क्योंकि आत्मा स्वयं को तो अंदर महसूस करती है ना, क्या मेरे में कमजोरी है। ज्ञान अर्थात समझ, जब ये मुझे समझ है क्या मेरे में कमजोरी है, तो ज्ञान हमें ये भी बताता है इस कमजोरी को हम कैसे मिटा सकते हैं, अर्थात कौन सी शक्ति हम अपने में भरें, हम अपने को किस प्रकार से चलाएं, बाबा की श्रीमत को कैसे हम पालन करें जिससे हमारे में वो शक्ति आवे और ये कमजोरी हमारी मिट जाए। तो ज्ञान अर्थात समझ, जब ये समझ है उसका प्रयोग बाबा ने कहा, उस समझ को काम में लाओ अर्थात वो शक्ति धारण करके कमजोरी को मिटाओ। हमने कमजोरी को मिटाया तब तो कहेंगे हमने ज्ञान का प्रयोग किया, परंतु हम समझते हैं, समझते हुए अगर कमजोरी को मिटाया नहीं, केवल समझ में ही रखा कि ये शक्ति से हम ये हमारी ये कमजोरी मिट सकती है, परंतु शक्ति को धारण नहीं किया और वो कमजोरी मेरे में रहती रही, तो इसको माना जाएगा कि हमने प्रयोग किया। अगर इस प्रकार समझते हुए भी हम अपने में कमजोरी रखते रहते हैं, तो इसको माना जाएगा कि हमारा बाप से योग है, हम स्मृति स्वरूप है, हमको ज्ञान है। ऐसे हम अपने आप से चर्चा करें, अपने से पूछें, अपने को समझाएं, जो बात हम दूसरे को समझाते हैं वो अपने को समझाएं। तो जितना जितना हम बाप की श्रीमत को अपने कर्म में, अपने संकल्प में, स्मृति में रखेंगे, उतना उतना हमारा योग बाप के साथ निरंतर बना रहेगा। निरंतर योग, अधिक समय योग का प्रयोग अभ्यास, जितना अधिक समय से हम उसमें विजयी बन करके चलते रहे हैं, अधिक समय की प्राप्ति ही हमारे योग को पावरफुल बनाती है। फिर हम उस स्टेज का सहज अनुभव कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं फरिश्ता स्टेज, संपूर्ण स्टेज। पहले हम अपने अंदर उस बात को स्पष्ट करें, प्रत्यक्ष करें। संपूर्ण स्टेज किसको कही जाती है? ज्ञान बाबा ने हम बच्चों को दिया है। अब उस संपूर्णता में मेरी क्या कमी है और उस कमी को ज्ञान से मैं कैसे संपन्न कर सकती हूँ, ये अंदर ही अंदर हम अपने आप से चर्चा करें। ये भी योग है ज्ञान की चर्चा, लेकिन बाप का दिया हुआ ज्ञान, बाप की याद, बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम्हें संपन्न बनना है, बाप का हम बच्चों को कहना है, बच्चे तुम्हें शक्तिशाली बनना है, बाप हमें कहते हैं बच्चे तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, और उस बाप के कहने को मैं अपने जीवन के कर्मों में ला रही हूं। तो ये भी योग है। योग माना याद, याद हर प्रकार से याद, जो जो बाप की सिख्याएं हैं वो सिख्याएं हमें याद आती ही रहे और उन सिख्याओं को हम अपने जीवन के कर्मों में, कहा जाता है ना मन वचन और कर्म, जब मन वचन और कर्म तीनों ही हमारे योग युक्त और युक्ति युक्त, युक्ति युक्त अर्थात जो ज्ञान कहता है, ज्ञान के अनुकूल जो हमें करना चाहिए, इसको कहा जाता है युक्ति युक्त। तो जितना हमारा मन वचन कर्म संकल्प बोल और कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त है, तो हमारे बुद्धि की लाइन क्लियर रहेंगी। बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर रहे उसके लिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो कोई ऐसी बात हमारे मन में आती है तो हम बाप के साथ सच्चे रहें, अपने मन की बात जैसी है वैसी बाप के आगे रखें, तो उसमें हमें बाप से मदद मिलती है, सहयोग मिलता है। जैसे आज भी बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को करेंट देता हूं, वो करेंट सकाश शक्ति बच्चे कैसे धारण कर सकते हैं, कौन से बच्चे वो करेंट ले सकते हैं जिनके बुद्धि की लाइन क्लियर है। एक तो जिनका बुद्धि योग पुरानी दुनिया से हटा हुआ है, बुद्धि योग में पुरानी दुनिया की कोई बात ना आए, और दूसरा लाइन क्लियर हो बुद्धि के अंदर और कोई भी बात कोई भी संकल्प कोई भी मायावी प्रकार की बात उस पर असर न करे, संकल्प में भी न उठे, हर संकल्प ईश्वर के प्रति हो, ईश्वर के अनुकूल हो, श्रीमत के अनुकूल हो, और उसको अपने कर्मों में सदा लाता रहे, अर्थात कर्म भी श्रेष्ठ हो। जब इस प्रकार हम अपनी जीवन को चलाते हैं तो हमारे अंदर योग की शक्ति जिसको योग बल कहा जाता है, उससे हमारे अंदर दिव्यता जागृत होती है, जो दैवी गुण है। दिव्यता हमारे अंदर जागृत होती जाती है। जैसे बताया ना, अग्नि दो प्रकार का काम करती है, जलाती है भस्म करती है, और दूसरी तरफ पकाती है तैयार करती है, जिससे फिर आजीव का जो चीज तैयार होंगी वो फिर स्वीकार करेंगे तो शक्ति आएंगी। तो ये योग बल, योग की शक्ति, लेकिन वो पावरफुल योग, पावरफुल योग केवल बैठ के योग लगाने से नहीं होता। जब हम एकांत में जाके बैठे, एकाग्रता पूर्वक हमारा योग भी तब लग सकता है जब हमारा इस प्रकार निरंतर योग, निरंतर बाप के श्रीमत पर कर्म, निरंतर बाप की शिक्षाओं पर हमारा संकल्प, निरंतर बाप के दिए हुए खजाने ज्ञान रतन हमारे मुख से हमारे बोल में हो, जब ये अधिक समय से इस प्रकार हम करते आते हैं तो ये अंदर ही अंदर आत्मा में शक्ति भरती जाती है, और ये शक्ति योग अर्थात याद, बाप की याद निरंतर बनी रहती है, और वो याद हमारी नेचुरल हो जाती है। जिस नेचुरल याद के अंदर वो शक्ति है जो हमारे पुराने संस्कार, पुराना खाता अंदर ही अंदर भस्म कर देती है, और हमारे अंदर दिव्यता, नए संस्कार, दैवी संस्कार, देवताओं समान जीवन, वो हमारी इमर्ज होती जाती है और हमारे कर्मों में, कर्म इंद्रियों से वो दिव्य कर्म, श्रेष्ठ कर्म, कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है और सर्व कर्म इंद्रियां शीतल बन जाती है। गाया जाता है, योगी शीतल काया वाले। जब हम ऐसे निरंतर योगी शीतल काया वाले बनते हैं, नैनो के अंदर, नैनो से रूहानी दृष्टि, नैनो में किस भी प्रकार की चंचलता नहीं, दृष्टि सदा रूहानी हो, जिसको भी देखें फौरन स्मृति आए आत्मा आत्मा भाई भाई हैं, हम आत्माएं उस एक बाप की संतान हैं, हम सब आपस में ये ईश्वरी परिवार है। ये स्मृति जागृत होनी चाहिए, इमर्ज रहे। ऐसे नहीं हम समझते हैं, हम तो जानते हैं ना, कहां भी जाए अंदर बुद्धि के अंदर ये इमर्ज रहे, मैं आत्मा कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूं। अब स्मृति में रहो, मैं आत्मा सर्वशक्तिवान की संतान, अपने स्वमान की स्मृति में स्थित हो जाए। अभी बात चल रही है योग अग्नि प्रज्वलित कैसे हो, अग्नि का रूप योग बल योग शक्ति मानी जाती है, पर वो अग्नि का रूप जिसमें पुराना खाता, पुराने संस्कार हमारे भस्म हो जाए और नए संस्कार, दिव्य गुण, दैवी संस्कार इमर्ज हो जाए, अर्थात हम देवता बनकर के तैयार होके निकले। अग्नि दो काम करती है ना, तो आप देखेंगे जब अग्नि जलाई जाती है आगे जमाने में, आजकल तो बिजली और गैस है, आगे जमाने में लकड़ी से जब जलाते थे, कोयले से या लकड़ी से जब अग्नि जलाते थे, तो एक लकड़ी नहीं, अग्नि पावर जोरदार अग्नि जलाएंगी, कई लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती है ना, एक लकड़ी से जलती है। हाँ, जो जानने वाले हैं पुराने जमाने वाले, और अभी देखो अच्छा गैस भी जलता है, तो गैस के कितनी कितना राउंड है, जिनके सब सोराखों से जब अग्नि निकलती है तो वो तेज अग्नि होती है, ऐसा होता है ना, गैस जो जलता है पूरा राउंड, जब वो जल जाता है, जब सब सोराख अग्नि निकालते हैं तो वो तेज अग्नि होती है, होता है ना ऐसा। इसी प्रकार से हम भी केवल बाबा को याद करना है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा सिर्फ नहीं, पर मेरा बाबा से जो जो हमें कुछ मिला है, सब बातें सब इकट्ठी हो, श्रीमत का पालन, शिक्षाओं की धारणा, ज्ञान जो हमें मिला है, इतना ज्ञान रतन, इतना समय बाबा हमको रोज रोज आके पढ़ाई पढ़ाता है, वो ज्ञान का मनन चिंतन, मन के अंदर वो ही चिंतन चलता रहे, तो मनन शक्ति भी हमारी पावरफुल हो, बुद्धि के अंदर एक बाप की स्मृति, दूसरा कोई नहीं, वो भी निरंतर बनी हुई हो, साथ में बाप से क्या क्या प्राप्तियां हुई है, वो प्राप्तियां हमें याद आती रहे, वो भी स्मृति में हो, बाप से जो हमारे सर्व संबंध है उनका रस क्या है, उनका आनंद क्या है, उनका स्नेह कैसा है, ये भी हम अनुभव करें और उस अनुभव की स्मृति बनी हुई हो, ये सब स्मृतियां और साथ में वो फिर हमारे जीवन के कर्मों में हो, श्रेष्ठ कर्म हो, श्रीमत के अनुकूल कर्म हो। तो जब हमारे श्रीमत के अनुकूल कर्म होता है तो खुशी रहती है, जीवन में परिवर्तन रहता है। ये सब बातें जब कठी कठी हमें स्मृति में है, स्मृति का समोह, तो याद हमारी एकाग्र हो जाती है, निरंतर बनी रहती है। और अधिक समय वो एकाग्रता रहती है तब वो हमारी पावरफुल याद, उस समय हम स्वयं को ऐसा महसूस करेंगे जैसे हम एक लाइट का गोला, जो बाबा कभी कभी कहते हैं ना, जैसे सर्च लाइट हम सारे विश्व को दे रहे हैं। कराची में हमें याद है जब साकार में बाप दादा हम बच्चों के साथ योग में बैठते, हमें योग में बिठाते थे, तो बाबा हम बच्चों को कहते थे, बच्चे योग में बैठते हो ऐसे करो जैसे सर्च लाइट हम सारी विश्व को दे रहे, ऐसे नहीं फलाने को देते हैं, फलाने को देते हैं, फलाने को देते हैं, बस बेहद में स्थित हो जाओ और ऐसे समझो हमारी सर्च लाइट सारे विश्व में फैल रही है। तो उस समय हमारी कितनी पावरफुल स्टेज चाहिए जो हमारी सर्च लाइट विश्व में फैलती जाए और उससे जिसको जिस बात की आवश्यकता होगी, जिसको जरूरत होगी, उसको उस बात का अनुभव अपने आप होगा। हमें कोई व्यक्ति का, हमें किसका, किसको विशेष याद नहीं करना है, लेकिन हमें बेहद में अपनी शक्ति फैलाते जाना है, तब हमारी ये याद पावरफुल रहेंगी। जिस पावरफुल याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिसके अंदर हमारे पुराने संस्कार खत्म हो जाते, अर्थात पुराना संस्कार फिर हमारे जीवन के कर्मों में नहीं आता और दिव्य संस्कार, देवताई संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होता, हमारे जीवन के कर्मों में, बोल में, कर्म में, व्यवहार में, संकल्प में वो दिव्यता बनी रहती और ऐसे दिव्यता हमारी प्रत्यक्ष होती जाती, हमारा दैवी स्वरूप प्रत्यक्ष होता जाता। जब इस प्रकार हम अपने जीवन में रहते हैं तो अपने लिए ये फरिश्ता स्वरूप की स्टेज, जिसमें न्यारा हो और सर्व का प्यारा हो, जैसे बाप सबसे न्यारा है, तो हमें पता है पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया है, इसमें हम सबसे न्यारे, सबसे बुद्धि योग हमारा हट जाता है, ये सब खत्म होने वाले हैं, और एक बाप और बाप का परिवार, बाप से मिली हुई सेवा, बस यही अपना कर्म हो जाता है। चलो अपना अपना शरीर निर्वाह के लिए जो कर्म है वो भी बाबा ने बताया है, समझो बाप ने हमें ये कर्म दिया है, पाठ है, वो पाठ बजा रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणों का कर्म, ब्राह्मणों की सेवा जो बाबा ने हमें दी है कि बाप का परिचय दो, जो तुम्हें बाप से खजाने मिले हैं वो सर्व को दो, ये हमारी सेवा है और वो हमारा पाठ है, शरीर निर्वाह अर्थ ये पाठ है जो हमें बजाना है, साकी होके पाठ बजाना है, बाप से मिली हुई सेवाएं हमें दिल से प्यार से करते रहना है, जो सेवाएं भी हमें योग युक्त बनने में बड़ी मदद करती हैं। इसी प्रकार जब हम अपने अंदर इन स्मृतियों को जागृत रखते हैं, जितना जितना हम स्मृति स्वरूप हैं, स्वमान की स्मृति, बाप की स्मृति, बाप के महानताओं की स्मृति, बाप के कर्तव्यों की स्मृति, बाप से प्राप्तियों की स्मृति, बाप के दिए हुए खजाने, ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, खुशी का खजाना, इन सब खजानों की स्मृति, इन सर्व स्मृतियों को योग कहा जाता है। ये सर्व स्मृतियां जितनी निरंतर एकाग्रता पूर्वक रहेंगी, उतना हमारा योग सहज और पावरफुल बना रहेगा, नेचुरल बनता जाएगा, जिससे हमारा बाप से प्यार अधिक बनता जाएगा, जिस प्यार से हम बाप से करेंट लेते जाएंगे, बाप की करेंट को हम कैच कर सकेंगे और वो करेंट अंदर हम आत्माओं को सच्चा सोना बनाती जाएंगी, जो हम सच्चा सोना बन करके फिर सोनी दुनिया में, पावन दुनिया में, स्वर्ग की दुनिया में देवता बन करके इस सृष्टि पर अवतरित होंगे। इसी प्रकार स्मृतियों के आधार से, ज्ञान के मनन चिंतन के आधार से, खुशी के आधार से हम अपने योग को शक्तिशाली बनाएं, पावरफुल बनाएं और योग बल अपने में अनुभव करते चले। तो बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे अपने अंदर योग का प्रयोग करो, अपने अंदर देखो मेरा कितना योग लगा हुआ है, उससे हमें कितनी प्राप्ति है और उससे हम कितना पावन बनते जाते हैं। ओम शांति। कोई को कुछ पूछना हो तो अपनी अपनी भाषा से पूछेंगे और फिर हमको बताएंगे, अगर पूछना है। योग अग्नि कैसे प्रज्वलित की जाए, क्लियर हुआ? बोलो, पूछो, क्लियर हुआ? हाँ, और इसमें कुछ पूछना है? हाँ, है तो अपना वो ही ज्ञान, पर ज्ञान को स्मरण कैसे करते रहना है, ज्ञान की हमारे अंदर स्मृति बनी रहे, नेचुरल होता जाए। जैसे शरीर की जीवन नेचुरल है, शरीर के लिए आजीविका आवश्यक है, वैसे आत्मा के लिए ये ज्ञान का भोजन आवश्यक है, और उसको मनन करेंगे तब ही उससे हमारे अंदर शक्ति बनेगी। जैसे स्थूल भोजन खाते हैं, पाचन शक्ति उसको पचा करके खून तैयार करती है, और खून ही हमारे शक्ति को, शरीर को शक्ति देता, शक्तिशाली बनाता है। इसी प्रकार मुझ आत्मा को ये ज्ञान का भोजन, जितना हम उसको मनन करेंगे, मनन चिंतन की शक्ति अर्थात पाचन शक्ति, ज्ञान को हम जो भोजन है आत्मा के लिए, उसको ये पकाते हैं अंदर, मनन चिंतन करके अपने मन और बुद्धि को ज्ञान युक्त बना देते हैं। तो उस शक्ति के, मनन शक्ति के द्वारा ये फिर हमारे अंदर शक्ति का रूप बन जाता है, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। जितनी आत्मा शक्तिशाली बनती जाएंगी, उतनी उसके अंदर दिव्यता जागृत होंगी, और जितनी दिव्यता जागृत होंगी उतना ही हमारे कर्मों में दिव्यता अथवा शुद्धता श्रेष्ठता आती जाएंगी, तब ही हम श्रेष्ठ योगी, सहज योगी और बाबा ने क्या बोला था, योगी, सहज योगी, सहयोगी और सर्वंश त्यागी, ऐसे बोला ना, तब ही कहलाए जा सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना हम फिर, हाँ बोलो नस्तिका के बोलो। इसका कारण है, पूछते हैं कभी कभी बैठते हैं तो नींद आती है, और अभी भी ऐसा है नहीं सामने में हम बैठे हैं ना अभी भी कहीं कहीं बैठे हैं ना। वास्तव में इसका सूक्ष्म अगर देखा जाए, सूक्ष्म में क्या हो जाता है, हम ब्राह्मण जब शुरू में आके बाबा का ज्ञान सुनते हैं तो हमारे में बड़ा उमंग रहता है, रुचि रहती है, नया नया ज्ञान है तो नए उमंग से हम सुनते जाते और हमारे में रुचि होती है और भी सुने। लेकिन जब हमारे बुद्धि में ज्ञान समझ में आ जाता है ना, समझ आ गई जो भी, क्योंकि बाबा का ज्ञान हम सुनते रहे, अभ्यास करते रहे, अनुभव होता गया, तो जब हमारा कदम आगे बढ़ता है, ज्ञान समझ में आ जाता है, तो बिल्कुल ये सूक्ष्म महीन है हमारे अंदर, हम समझ गए हैं तो और सुनने समझने का जो इंटरेस्ट है, अंदर की रुचि वो थोड़ी हल्की हो जाती है, साधारण हो जाती है। साधारण अंदर में थोड़ी साधारणता आ जाने के कारण जब भी हम बैठते हैं ना, देखो शुरू में आप जब योग में बैठेंगे ना तो अलर्ट रहेंगे, अंदर याद करते रहेंगे, चिंतन चलता रहेगा, अपन को देखते रहेंगे और अपन को अलर्ट रीति से बिठाएंगे। लेकिन जब हम योगी बन गए, योग लग गया और समझ गए, फिर धीरे धीरे ना अंदर हमारे बड़ी साधारणता, माना जानते हैं, समझ गए, बाप को भी पहचान लिया, तो उनके लिए फिर जो चिंतन रहे ना वो हमारा थोड़ा हल्का हो जाता है। तो जब बैठते हैं अगर अंदर में कुछ नहीं चलता है, अलर्ट नहीं है, तो सुस्ती आएंगी ना। जब हम अंदर अलर्ट होते हैं तो सुस्ती नहीं आती है। तो ये अंदर की अलर्टनेस चाहिए, अटेंशन चाहिए, उस समय हम समझे नहीं हमें कुछ करना है। जैसे नौकरी पे जाते हैं, धंधे पे जाते हैं तो करना है ना कुछ, चलो समझो ग्राहक न भी आएगा तो भी जांच करते रहेंगे, अब क्या है, क्या कैसे, ग्राहक ध्यान रहेगा, अभी कोई आए ऐसा करे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो भले समझो और कुछ नहीं है, पर अंदर ये तो हमको सदा का काम मिला हुआ है ना, तो अंदर हम अपना चिंतन करते रहे, बाबा ने इतना हमको दे दिया है खजाना जो अंदर भरा हुआ है, उसको हम चिंतन कर, कभी कोई स्टेज को, कभी कोई बात बाबा की याद कर, चलो समझो ऊंची ऊंची स्टेज न भी याद करें, पर कोई ज्ञान की पॉइंट ही याद करें, मतलब मन हमारा चिंतन करता रहे। हम अंदर से अगर चिंतन बंद करते हैं, योग माना ये नहीं है कि अंदर कोई चिंतन न चले, योग शुद्ध चिंतन, स्मृति है ना, तो स्मृति में कुछ याद है ना, वो हमारे अंदर इमर्ज होना चाहिए, याद रहना चाहिए, क्या मैं याद कर रहा हूं ये अपने को पता होना चाहिए। हम समझते हैं बस बाबा के हैं, बैठ गए तो अभी कुछ नहीं करो तो सुस्ती आएंगी ना। तो ये सूक्ष्म मन और बुद्धि जब फ्री हो जाते हैं तो सुस्ती आने लग जाती है, उसको हमें बिजी रखना है। शरीर भी जब फ्री हो जाओ तो क्या, कुछ काम नहीं है, चलो सो जाते हैं। शरीर से भी ऐसे है ना, काम में बिजी रहो तो नींद का समय भी होगा तो भी निकल जाएगा, काम पूरा करना है पहले। तो अंदर इतना हम अपने मन और बुद्धि को काम में बिजी करें, मन को मनन शक्ति के अंदर और बुद्धि के अंदर स्मृति जो बाबा ने दी है अनादि अपना कल्प पहले वाली स्मृतियां, अब वो हमारे अंदर जागृत है तो कितना ध्यान, कौन सी बात बाबा ने बता दिया है, पर हमें याद आनी चाहिए ना। तो अंदर कुछ ना कुछ हमारे इमर्ज रहना चाहिए, जितना इमर्ज रहेगा उतनी हमको खुशी रहेगी, और खुशी रहेगी ये भी एक याद का स्वरूप है, तो खुशी में नींद नहीं आएंगी, चिंतन चलता रहेगा नींद नहीं आएंगी। पर हम समझते हैं योग माना बस संकल्प न चले तो सुस्ती आ जाती, इसलिए जब हम देखें थोड़ी सुस्ती आती है तो मन को जागृत करें, आत्मा जागृत ज्योति स्वरूप अपने मन को संकल्प को जागृत करें, चलाना शुरू करें। आज बाबा ने क्या बताया, आज हमने क्या सुना, आज फलानी बात में कितना रहस्य था बाबा का, उसकी महीनता को जानने की कोशिश करें। फिर सुस्ती एक बार हट गई फिर योग अच्छी रीत लग जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन ब्रह्मा जब आगे चलते हैं तो थोड़ा ये सुस्ती, और अधिक समय मधुबन में तो आप लोगों को अधिक समय बैठना पड़ता है, इतना बैठने का वहां तो अभ्यास नहीं है। वैसे तो भाई लोग तो नौकरी पर जाते हैं तो 8-8 घंटा तो बैठते हैं ही, पर वो तो काम करते रहते हैं ना शरीर से तो शरीर चलता रहता है तो फिर सुस्ती नहीं आती है। या तो शरीर को बिठाना है और अंदर चलाना है, तो इसलिए भी थोड़ा शरीर थक जाता है तो भी सुस्ती आती है। परंतु ये अंदर अपने मन बुद्धि को थोड़ा चुस्त कर देना है। बोलो ठीक है जवाब। पावरफुल याद से जलेंगे, बाप को याद करने से, प्रश्न है बाप को याद करने से पाप खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर याद पावरफुल हो, याद बनी रहे, याद टूटे नहीं, और उस याद को हम कर्म में लाते जाएं तो वो पावरफुल याद हमारे पापों को भस्म करती है। ये पूछती है कि जब ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है तो हम सब कुछ छोड़ के और ट्रैफिक कंट्रोल पर अटेंशन दें, तो हम कहती है हाँ, ये रखा ही, ये नियम इसलिए बनाया है कि अभ्यास हमारा बढ़ता जाए, क्योंकि कर्म करते हुए हमारी याद पूरा टाइम नहीं बन पाती है, तो कर्म के बीच बीच में चलो 3 मिनट हम कर्म छोड़ देते हैं तो ये फिर याद का अभ्यास उस समय याद और ही अच्छी पावरफुल हो जाती है, क्योंकि अटेंशन से याद में रहते हैं, तो उस याद का बल फिर हमको कर्म में मदद करता है। इसलिए ये कर्म उस समय 2 मिनट रुक करके भी याद में रहना ठीक। उनको कोई होगा जरूरी कहाँ पहुंचना, तो शांति में ऐसे साइलेंट से जाकर पहुंचेंगे, बाकी अधिकतर तो हम लोग शांत हो जाते। एनी मोर क्वेश्चन? ऑल राइट, और संतुष्ट है, क्योंकि सभी अनुभवी है, योगी है, योग के अभ्यासी है, इसलिए इन बातों को सहज समझ भी लेते हैं और करते ही रहते हैं। आपस में मिलते हैं, बातों को थोड़ा और स्पष्ट करते रहें, और आपस में लेन देन करने से, बार बार सुनने से बात क्लियर होती है और अपने सहज समझ में आ जाती है। अच्छा, ओम शांति।